ओम शांति मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और आज हम कवियों के बीच उपस्थित हैं। कविता की दुनिया मूल्य मनुष्यता और संवेदना की दुनिया होती है, मगर अंततः कवि भी एक मनुष्य होता है और उसे भी संसार में रहते हुए व्यावहारिक जीवन जीना पड़ता है। और व्यावहारिक जीवन में क्षोभ, कुंठा, संतरास, उदासी, दुख, शोक, अर्थात जितनी भी वृत्तियां हैं उनका भी गाहे बगाहे उन्हें शिकार होना पड़ता है। बावजूद इसके कविता की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां से हम सृजन करते हैं, नए मनुष्य का सृजन करते हैं, सौंदर्य का सृजन करते हैं, नया नया हम प्रतिमान गढ़ते रहते हैं, अपने पुरखों से भी जुड़े रहते हैं और जुड़ते हुए वर्तमान समय को ध्यान में रखकर वर्तमान समय की उदासीनता दूर करते हुए आने वाले समय को भी हम निरंतर प्रबुद्ध करने की दिशा में सक्रिय रहते हैं। लेकिन कवियों में भी जब उदासी आती है, कवियों में भी जब कुंठा घर कर जाती है, ऐसे में स्वाभाविक रूप से उनके लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और हम इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए कविता की दुनिया में रहते हुए भी कवियों की समस्या के समाधान के लिए बिहार प्रांत के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में स्थित सुख शांति भवन, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ऐसा आध्यात्मिक और तपस्या केंद्र है जिसकी संचालिका राजयोगिनी रानी दीदी हैं। और रानी दीदी संपूर्ण उत्तर बिहार को संचालित करती हैं अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी लग्नशीलता से, अपनी समर्पणशीलता से। निरंतर आत्मा और परमात्मा के बीच मनुष्यों को एक सेतु के रूप में उपस्थित करते हुए निरंतर शुभ और पवित्र भाव का संचरण समाज से लेकर राष्ट्र तक में निरंतर करती रहती हैं। रानी दीदी आज वरिष्ठ कवि और जाने माने कवि, एक ऐसे वरिष्ठ शब्दकर्मी हमारे बीच उपस्थित है जिनकी कई कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं और पूरे हिंदी परिदृश्य पर ये जाने माने जाते हैं। गीत, कविता, शेर व शायरी की दुनिया में रमने वाले ये लोग कहीं न कहीं से आज भी अपनी स्नेहशीलता से और अपने शब्द व्यवहार से परिवेश को ही नहीं परिमार्जित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन पारिवारिक उपेक्षा, सरकारी उपेक्षा, सामाजिक उपेक्षा, कई कई उपेक्षाओं का दंश झेलना पड़ता है। सच यह भी है कि कविता की उपज ही दुख और विषाद से हुई थी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से अनायास ही अनुष्टुप छंद जो शोक गीत था वह प्रस्फुटित हुआ था। लेकिन दुख से उबरने के लिए हम कविता का सहारा ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारा दुख, बहुत सारी उपेक्षा ऐसी भी होती है जिसे हम सहज सह नहीं पाते हैं। तो कविता की दुनिया में होने का अर्थ और कविता आपकी दृष्टि में आध्यात्मिक दुनिया में और मूल्य और मनुष्यता की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है, रानी दीदी आपसे हम जानना चाहेंगे और इनके प्रश्नों का उत्तर भी आपसे हम जानना चाहेंगे।
आज हमें बहुत खुशी है कि आप सभी कवि इस आध्यात्मिक केंद्र में आए और इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का कैसे लाभ अपने को और समाज को मिले इसकी आज हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। आप कवि भी हैं, आप अनुभवी भी हैं, और ये कविता और ये अनुभव अपने लिए भी और समाज के भी मार्गदर्शन में सहयोगी है। आपके एक एक शब्द, एक एक भाव सबके दिलों में एक श्रेष्ठ भाव को जगाने वाला है। समाज कल्याण का कार्य आपके ही हाथों में है। समाज के अंदर ऐसी भावनाएं जगा दें, समाज के अंदर एक एक मानव के अंदर ऐसी ज्योति जगा दें कि वो अनुभव करें कि मैं उस प्रभु का हूं। प्रभु प्रेम जग जाए, वो आध्यात्मिकता की शक्ति जग जाए और हर समस्या का समाधान उसी में निहित है। तो आज इस ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत है जहां हमें आत्म अनुभूति हो, जहां हमें परमात्मा अनुभूति हो और हमें यह अनुभव हो कि हमारे ऊपर ईश्वर का प्रेम बरस रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है, वो हर कदम हमारे साथ है, हम उनको साथ लेकर ही चलते हैं, अकेले चलते ही नहीं हैं, उनका हाथ हमारे सिर पर है, उनके हाथ में हमारा हाथ है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसी प्रेममय भावनाएं जगाने का कार्य आप सबका है, क्योंकि जो भी समस्याएं किसी के सामने आती हैं, भौतिक हैं, व्यक्तियों के द्वारा हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं जगती हैं, लेकिन हमें अगर ये याद रह जाए कि हमें समस्या नहीं, हमेशा समाधान को ही याद रखना है, हमारे मन में समस्या समस्या नहीं, समाधान ही समाधान है, कारण कारण नहीं, निवारण ही निवारण है, ये भाव आप ही जगा सकते हैं और सरलता से, सहजता से और रसदार, कविता में तो रस होता है, कविता तो आनंद देने वाली होती है, कविता तो मन को झंकृत कर देती है, मन को आह्लादित कर देती है, ऐसे भाव जगाए हैं हमारे कई ऋषि मुनियों ने, ऐसे काव्य लिखे हैं जिसके द्वारा प्रभु प्रेम की चर्चा की है। वर्तमान युग में जब संसार भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, आज इसकी आवश्यकता है और हम समझते हैं ये जिम्मेवारी आप सबके ऊपर है।
भाव जगत में रहने वाले शब्द ब्रह्म के उपासक ये कवि निरंतर लय को अनुभूत करते हुए अक्षर गढ़ने का काम करते हैं और विचार भाव सचमुच अक्षर है और धरती के ये ब्रह्मा अंततः रहते इसी संसार में हैं, जो संसार द्वंद्वों से भरा हुआ है, माया और दुख सुख के संजाल से जकड़ा हुआ है। ऐसे में हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं उनके हृदय को टटोलते हुए कि उनकी पीड़ा, लेखकीय पीड़ा से लेकर पारिवारिक सामाजिक और वैचारिक पीड़ा क्या होती है। हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर राजनारायण राय जी। और डॉक्टर राजनारायण राय जी, आपसे आपकी समस्या हम जानते हुए परमादरणीय रानी दीदी से समाधान की दिशा की ओर अग्रसर होंगे, आप शब्दों को महसूस करते हुए अंततः किसी न किसी शब्द का प्रभाव आपके हृदय पर भी पड़ता होगा, आप उदास होते होंगे, ऐसे में आपकी उदासी दूर करने के लिए, निराकरण के लिए कहीं तो जाना चाहते होंगे। डॉक्टर राजनारायण राय जी,
आज इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ, कवियों के साथ उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। अनुभव के पुंज, अनुभूति के पुंज, आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज, रानी दीदी ने हम कवियों के लिए कहा कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि और वहां जाए अनुभवी, तक कह दिया। अनुभव के पुंज, अनुभूति के पुंज और आध्यात्मिकता के पुंज दीदी से मैं जानना चाहूंगा कि कबीर ने कहा कि आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या कहा, लेकिन इस आत्मज्ञान को बिना समझे हुए भगवान ने जो हमको मुस्कान का वरदान दिया, आज हमारे अधरों पर जो मुस्कान की रेखा, तिरजक रेखा खेलती रहती है, वह नहीं रही, उसका कारण क्या है, मैं दीदी से यही जानना चाहता हूँ।
कहा गया आत्मज्ञान बिना सब सुना, आज आत्मा शब्द सब जानते हैं, काया नाशवान है और आत्मा अमर है सब जानते हैं, लेकिन आत्म अनुभूति नहीं है। आत्मा क्या चीज है, मैं आत्मा हूं ये अनुभव नहीं है। आध्यात्मिकता का प्रारंभ यहीं से होता है, आध्यात्मिकता का अर्थ ही है वो अध्याय जो आत्म अनुभूति करा दे, वो आध्यात्मिक है। तो हमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान चाहिए कि मैं जो सारा दिन हम करते हैं, ये शरीर मेरा है, मैं नहीं, मैं कौन हूँ? मैं आंख नहीं, आंख से जो देख रहा है वो मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन कर्म इंद्रियों के द्वारा, वो मैं चैतन्य हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। हमें आत्म अनुभूति अगर हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की बाल युवा वृद्ध अवस्था नहीं होती। आज शरीर का प्रभाव पड़ता है, हम वृद्ध हो गए हैं क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं। ये शरीर वृद्ध हुआ है, मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ जिसने अनेक जन्म लिए हैं। एक काया छोड़ के आत्मा दूसरा जन्म लेती है। हमें आत्म अनुभूति चाहिए। अगर आत्म अनुभूति होगी तो सदा मुस्कान रहेगी। हर समस्या को ऐसा देखेंगे जैसे एक नाटक देख रहे हैं, एक ड्रामा देख रहे हैं, और मैं एक एक्टर बनकर आया हूँ पार्ट बजाने के लिए। मैं एक एक्टर हूँ, किसी के भी कर्मों पर मुझे ध्यान नहीं देना है, पर चिंतन नहीं करना है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आत्म अनुभूति होगी तो हमारी जिम्मेवारी है हम अच्छे से अच्छा सोचें, अच्छे से अच्छा करें, अपने लिए भी और सबके लिए भी, क्योंकि आत्म अनुभूति प्रभु से प्रेम करा देती है। आत्मा का तो पिता परमात्मा है, आत्मा का रक्षक परमात्मा है, आत्मा का गाइड भी वही है। जब उनके साथ मेरा रिलेशन जुटा हुआ है तो हर समस्या का समाधान मुझे नहीं, उन्हें ही करना है, वो भी उनके अर्पण है। ये स्थिति हमारी सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, इसी को योगी की अवस्था कहते हैं। आज आवश्यकता है हम सभी ऐसी ही स्थिति में स्थित हो जाएं।
एक सार्थक, समर्थ और कालजयी कविता आत्मा की ही अभिव्यक्ति होती है। और दीदी ने कहा कि आत्मा के पास जब हम चले जाते हैं तो हमारा संवाद परमात्मा से होता है, और ऐसे में आदमी सहज स्वाभाविक आनंद की मुस्कान ही अपने चेहरे पर चस्पा करता है। हम अपने बीच उपस्थित एक ऐसे कवि से जानना चाहते हैं उसकी पीड़ा, उसकी व्यथा, उसका द्वंद्व, जो निरंतर हास्य व्यंग्य के माध्यम से लोगों को गुदगुदाहट से भर तो देता है मगर निजी जिंदगी में रोने वाला ही गाता है। वह रोता है तो ऐसे क्षण में अपनी मुस्कान के लिए कहीं न कहीं कोई रास्ता, कोई उपाय उसे भी चाहिए। कभी चंद राकेश, आपकी समस्या समाधान के लिए वरिष्ठ राजयोगिनी रानी दीदी।
सबसे पहले तो हम आभारी हैं कि आज अपने दिल की बात रखने का मौका आपके बीच मिला। इस संदेह कभी भी आदमी तो होता ही है, दो रूप हो जाते हैं, एक तो वह जो कविता लिखता है, एक वह जो समाज में जीता है। हम भी उस श्रेणी में आते हैं जहां बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, सारे लोगों की उम्मीदें हमारे पर टिकी रहती है, और कोई जरूरी नहीं होता है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो अपनी विचारधारा है, वो हमारे परिवार वालों से मेल भी खाए। मैं एक बात बराबर सोचता हूं, मैं हास्य और व्यंग की कविताओं से जुड़ा हुआ हूं, और मेरे मन में निरंतर यह भावना रहती है कि हंसते हंसते मैं उन बातों को प्रकट करूं लोगों के बीच, समाज के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को सचेत भी करूं, सजग भी करूं, और उन लोगों को भी मैं सचेत करूं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं, भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इतना कर लेने के बाद भी इतनी मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं जो हमारे देश को सर्वनाश की तरफ ले जा रहे हैं। क्या हमारी कलम इतनी कुंठित हो गई है, या हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लिखने के बाद भी एक आत्म संतोष नहीं हो पाता है। तो मैं दीदी से जानना चाहता हूं कि हम जो ये प्रयास करते हैं, और मैं तो बराबर ये प्रयास करता हूं कि अपनी बातों को निरंतर हंसते हंसाते प्रश्नों को रखना, और उन प्रश्नों का जवाब मैं भी ढूंढता हूं, और उन लोगों से भी मैं चाहता हूं कि वो ढूंढें जिस सब्जेक्ट पर मैं चलता हूं।
इनकी पीड़ा भाव जगत की पीड़ा है, और जिसके लिए व्यंग्य करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे में ये क्षुब्ध होते हैं, तो उसका समाधान चाहिए।
आज ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो अपने व्यवहार से शिक्षा दें, शब्दों से नहीं। लोग कहते हैं कहना तो बहुत आसान है, करके दिखाएं। और यही आवश्यकता है। कैसी भी परिस्थिति में हम परमात्मा का साथ लेकर मुस्कुरा सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं। हम हर परिस्थिति में उनके साथ रहकर इस सृष्टि के हर दृश्य को देखते हुए आनंदित हो सकते हैं और इस भ्रष्टाचारी दुनिया में रहकर भी शिष्टाचारी बनकर जी सकते हैं और अच्छी तरह से कोई कमी नहीं अपने व्यवसाय में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए, अपने कार्य अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए हम कितने बैलेंस में रह सकते हैं, कितना संतुष्ट रह सकते हैं, कितने आदर्श स्वरूप रह सकते हैं, करके दिखाने की आवश्यकता है। और करके दिखाना क्या मुश्किल है? नहीं, हमारा ये अनुभव कहता है सत्य को अपनाना बहुत सहज है, बहुत आसान है। जब सत्य को अपनाते हैं असत्य तो अपने आप छूट जाता है, अच्छाई को ग्रहण करते हैं बुराई छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाती है। दीपक जगाते हैं अंधेरा अपने आप चला जाता है, भगाना नहीं पड़ता। इसलिए हमको श्रेष्ठाचारी बनना, पवित्र बनना, दिव्य गुण संपन्न बनना बहुत सहज है, बहुत सरल है। इस समाज में रहते हुए भी कोई हमें रोकने वाला नहीं है, अगर हमारे विचारों में दृढ़ता है हम उसे कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आध्यात्मिक ज्ञान, दूसरा राजयोग, तीसरा दैवी गुणों की धारणा, चौथा सेवा। औरों के लिए काम हम बाद में करें, पहले ज्ञान ग्रहण करें, गुण ग्रहण करें। अगर ये हम करते हैं, हम मन को एकाग्र करें, अगर हम ये करते हैं तो हमारी स्थिति औरों को प्रेरक बन जाती है, औरों को प्रेरणा देती है। हम कहते हैं सहज है, सरल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ते हुए श्रेष्ठाचारी बनकर चलना, सत्यता को लेकर चलना, एक आदर्श स्वरूप बनकर के चलना सहज है, सहज है, ये कहकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ताकि लोगों ने जो कह दिया है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कहकर वो कदम ही आगे नहीं बढ़ाते। आज सहज सहज कह के और सहज करके दिखाकर हम चलें, ताकि और लोग हमारे मन वचन और कर्म से प्रेरणा लें और उसे करके वो भी जीवन को आनंदित बनाए।
दूसरों पर खींचने झीकने के बजाय स्वयं को ही आदर्श और मिसाल बनाए। हम न बोलेंगे हमारी बात बोलेगी। इसी पर हम अपनी कविताई दुनिया में जीते रहें, रमते रहें। हमारी उदासी हमारे पास तक अटकेगी भी नहीं। हमारे बीच शेर व शायरी की दुनिया का एक अजीम शख्स उपस्थित है, जो अपने गमों को भी मुस्कुराहट में ढालता हुआ निरंतर चाहता है कि परिवेश में एक खिलखिलाहट, एक हंसी और एक आनंद का वातावरण निरंतर ध्वनित होता रहे। मगर उसकी भी अपनी जिंदगी है और उस जिंदगी में गम भी हैं, कांटे भी हैं। सुकून और राहत देने के लिए शेर व शायरी की दुनिया है, मगर वाह रूप में उसे भी आक्रांत होना पड़ता है अपने परिवेश से। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर शिबगतुल्ला हमीदी से उनका दर्द, उनकी परेशानी, पेशानी पर खींचती हुई रेखाओं का भाव और उसकी अभिव्यक्ति और उसके समाधान के लिए रानी दीदी।
जनरली मैंने मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो लोग हैं, हम ये देखते हैं कि वो पूजा भी करते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं। तो एक तरफ पूजा भी करते हैं, कहीं नमाज भी पढ़ते हैं, कहीं मिलाद भी करते हैं, कहीं कीर्तन भी करते हैं, सारी बातें करते हैं। कम से कम 90% तो लोग रिलीजियस जरूर है, 10% होंगे जिनको किसी पर आस्था न हो। लेकिन एक बात आज तक हमको समझना है कि जितना नमाज पढ़ते हैं, जितना पूजा करते हैं, लेकिन हमारे जनरल कार्यशैली में उसका कोई असर नहीं, और उतनी ही घुसखोरी, उतनी ही करप्शन का लेवल हर दिन बढ़ रहा है। तो हम ये बात बहुत गंभीर प्रश्न है कि हम कौन सा रिलीजन मानते हैं। और रिलीजन का अर्थ है, अगर ठीक है करप्शन करें, घूस लें, जितना गंदा काम है सब करें, तो फिर भगवान के पास क्यों जाते हैं? जब अगर अच्छी बातें हमारे अंदर नहीं है, या वो किसी गलत करने का डर हमको नहीं है, भगवान का डर नहीं है, अल्लाह का डर हमको नहीं है, तो हम फिर मस्जिद में या मंदिर में क्यों जाते हैं?
लोग जो भक्ति करते हैं, ईश्वर के आगे जाके जो प्रार्थना करते हैं, आप इतने श्रेष्ठ हैं, आप इतने महान हैं, आप तो ईश्वर हैं, लेकिन मैं मूर्ख हूं, पापी हूं, शैतान हूं, नीच हूं, रोज कह देते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मैं पापी हूं। कहने मात्र समझते हैं, ऐसा कहकर हम ईश्वर को प्रसन्न कर देंगे। रोज कहते हैं मैं पापी हूं, रोज पाप करते हैं, रोज कुकर्म करते हैं, रोज गलतियां करते हैं, रोज झूठ बोलते हैं और रोज आना माफी मांगते हैं। यही कारण है संसार के पतन का। एक तो वो व्यक्ति गलती करता है जो नहीं जानता ये गलत है, एक वो व्यक्ति गलती करता है जो जानता है ये पाप है, जो जानता है ये भ्रष्टाचार है, फिर भी उसे करता है, तो उसके ऊपर 100 गुना दंड हो जाता है ईश्वर के दरबार में। यही कारण है कि संसार में आज भक्ति बहुत है, लोग ईश्वर के पास बहुत जा रहे हैं, बहुत आवाज लगा रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, लेकिन गिरावट चरम सीमा की ओर बढ़ती जा रही है, अति हो रही है। इसीलिए आज धर्म को मानने वाले बहुत हैं, नास्तिक बहुत कम मिलेंगे, धर्म पर मर मिटने वाले, कुर्बान हो जाने वालों की कमी नहीं है। आज अपनी जान दे देंगे धर्म के नाम पर, लेकिन धर्म युक्त आचरण नहीं है। धर्म का अर्थ ही है धारणा, धर्म को मानते हैं लेकिन जीवन में धारणा नहीं है, सिर्फ नाम मात्र, कहने मात्र। धर्म की बहुत चर्चा है लेकिन राज्य अधर्म का है, हर एक के मन के अंदर अधर्म राज्य कर रहा है, अधर्म कर्म कर रहा है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अति धर्म गिलानी हो जाती है। धर्म को केवल लोग मानते हैं, धर्म युक्त आचरण नहीं है। ऐसे समय में भगवान को आना पड़ता है धर्म स्थापन करने, धर्म की परिभाषा बताने के लिए। धर्म किसे कहते हैं? धारणा का नाम है धर्म। हमारे जीवन में पवित्रता हो, सरलता हो, सत्यता हो, श्रेष्ठता हो, परोपकार की भावना हो, रहम दिल हो, हर एक के साथ हमदर्दी हो, जो ईश्वर के गुण हैं वो हमारे अंदर काम करें, ये है धर्म युक्त आचरण। ये ना होने के कारण लोग शांति 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 पुकारते रहते हैं, शांति नहीं मिलती। सुख के लिए धन इकट्ठा करते हैं, साधन इकट्ठे करते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं, लेकिन मानसिक सुख नहीं मिलता, छोटी छोटी बातों में दुखी होते ही रहते हैं। मन के अंदर दूसरे के विचारों कर्मों की गठड़ियां बांध के रखी हैं, गांठें बांध के रखी हैं, खोलते ही नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति बाहर से बहुत सुखी दिखने वाला बहुत टेंशन में है, उसको नींद नहीं आती, वो दवाइयां खाता है सुबह से रात तक, उसको चैन नहीं मिलता। इसलिए सबसे ज्यादा सुख देने वाले हैं हमारे श्रेष्ठ कर्म, हमारा आचरण। अगर हमारी धारणा हो, ये धर्म युक्त आचरण हो, जैसा धर्म वैसा कर्म, जैसी धारणा है हमारे मन की वैसा कर्म है। अगर ऐसा हो तभी सारा संसार सुखमय संसार बन सकता है। प्रभु को आकर यही धर्म स्थापन करना पड़ता है। कहाँ धर्म स्थापन करते हैं? हमारे मन में, मन को बनाते हैं धर्म युक्त, आचरण बनता है धर्म युक्त। तब हम ये नहीं कहते मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, शैतान हूँ, नहीं। जब आप पतित पावन हो तो उनका पुत्र भी पतित पावन, जब आप दाता हो तो उनकी संतान भी दाता, आप भाग्य विधाता हो तो उनकी संतान भी भाग्य विधाता। वो दुख हरता सुख करता है तो संतान भी दुख हरता सुख करता अपने परम पिता परमात्मा के समान अगर हमारे अंदर गुण आ जाएं, तो जीवन में आनंद सुख शांति और पवित्रता की अनुभूति होती है।
सकारात्मकता के साथ अपने हृदय अपनी आत्मा और अपने पुष्ट मन के साथ जब हम संवाद करते हैं तो निश्चित रूप से जब रचते हैं तो हमारे सामने ईश्वर होता है और ईश्वर के साथ ही साथ शब्द का संस्पर्श होता है और कालजयी रचनाएं आती हैं। हम ब्रह्मा की भूमिका में होते हैं और ब्रह्मा जब ध्वनित होता है तो युग युगांतर तक उसकी आवाज जाती है। रानी दीदी, मार्गदर्शन में कवियों ने आपके अनुभव का लाभ लिया, आपके ज्ञान का लाभ लिया, आपकी तपस्या और आपकी साधना का लाभ लिया और कविता पर शब्दों के माध्यम से जितनी अच्छी अभिव्यक्ति के साथ ही साथ कवियों के दुख दर्द को सुनते हुए आपने उनके मनोबल को, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। कविता की दुनिया विश्वास की दुनिया होती है, मूल्य और मनुष्यता की दुनिया होती है। ओम शांति।